नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कल संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा दिखाती है कि भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस कैसे लगातार और मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। आर्थिक समीक्षा मजबूत वृहत आर्थिक बुनियाद, लगातार विकास की गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। एक रिपोर्ट।
आर्थिक समीक्षा समावेशी विकास के महत्व पर बल देती है, जिसमें किसानों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों, युवाओं के रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाएं आर्थिक बदलाव के मुख्य चालक के रूप में उभर रही हैं। समीक्षा में प्रस्तुत रूपरेखा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विनिर्माण को मजबूत करने, उत्पादकता में सुधार करने और भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रगति को तेज करने के लिए स्पष्ट दिशा देती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समीक्षा में गई जानकारी सूचित नीतियां बनाने और भारत के आर्थिक भविष्य में विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार विकास की गति बनाए रखने और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करती रहेगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और स्थिर प्रगति हुई है, जिसके कारण देश वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2019 में 66वें स्थान की तुलना में 2025 में 38वें स्थान पर आ गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विनिर्माण, अनुसंधान, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकारी पहल ने भारत को नवाचार और औद्योगिक विकास के उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होने की मदद की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगर ने कहा है कि भारत ने दिखाया है कि वह विस्मयकारी विकास कर सकता है। भुवनेश्वर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक समीक्षा में अनुमानित विकास दर हासिल करेगा। पिछले 10 वर्ष में भारत में अवसंरचना में काफी सराहनीय निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत में लोगों को कुशल बनाना महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ट्रांस यमुना क्षेत्र के तेज विकास के लिए 728 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक के दौरान बजट आवंटन की घोषणा की।
दिल्ली राज्य में आपको जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको परमानेंट समाधान हम देंगे।
ट्रांस यमुना विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी विधायकों के प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असम के 2 दिन के दौरे पर कल डिब्रूगढ़ पहुंचे। डिब्रूगढ़ में गृहमंत्री असम विधानसभा के दूसरे परिसर, विधायक आवास और वन्यजीव स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह डिब्रूगढ़ में 35,000 दर्शकों की क्षमता वाले अत्याधुनिक स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे और स्टेडियम के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। श्री अमित शाह आज रात 8 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वो कल बैरकपुर में पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी अध्यक्ष का ये दौरा गोवा में भाजपा के बूथ स्तर के संगठन को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आज शहीद दिवस है। इस अवसर पर देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक तंगी और शासन व्यवस्था के प्रति बढ़ते जनाक्रोश के कारण देशव्यापी प्रदर्शनों पर तेहरान की घातक कार्रवाई को देखते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ के शीर्ष कमांडरों सहित 15 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।